તારીખ 20/6/1997 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 128 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 207
નાકી રૂપ નિહાળતા નાકે રૂપ નિહાળતા ગુજરાતી પદ ગુજરાતી પદ હે નિહાળતા નિહાળતા મેને નિરખતા નિહાળતા મેને નિરખતા નાક મેને નાક નાસિકા ऐसे लौकिक में भी जो मनुष्य का रूप है उसमें नाक का नाक जो अवयव है वो एक मुख्य अंग गिना जाता है। कृपाल देव ने 860 नंबर का जो पत्र है उसमें उस विषय पर अपना अभिप्राय लिखा है। बहुत बढ़िया अभिप्राय है। कि इसका परमार्थ क्या है? परमार्थ माने इस पद का, इस चरण का आत्महित में क्या उपयोग है। यह चरण का अर्थ वितराग मुद्रा सूचक है। कैसे? कि जो वितराग है हमारे सर्वज्ञ वितराग परमात्मा जिनेन्द्र, तो जिनेश्वर का की मुद्रा कैसी होती है? कि वो अपने स्वरूप को भीतर में निरखते हैं। जब वो अपने स्वरूप को भीतर में अंतर्मुख होकर के निरखते हैं तब उनकी चक्षु दृष्टि जो है, आंख की जो दृष्टि है, वो नासिकाग्र हो जाती है। ऐसे देखते हैं, ध्यानस्थ अवस्था में ऐसे नेत्र ऐसे हो जाते हैं। तो बाह्य दृष्टि वाले को दिखता है कि अपने नाक को देख रहे हैं, लेकिन जिसको वितरागता देखने में आती है उसी पोजीशन में, जिसको वितरागता देखने में आती है उनको ये मालूम पड़ता है कि नाक से स्वरूप को तो निरखते हैं, नाक के रूप निहारता। तो इसका जो अर्थ है, पद का जो अर्थ है, वो तो वितराग मुद्रा सूचक है। उसमें जिनेन्द्र देव की मुख मुद्रा पे जो वितरागता छा जाती है वो प्रत्यक्ष तौर से दिखाई देती है। यानी इस परिस्थिति में, इस स्थिति में भगवान की वितरागता का दर्शन होता है। वितराग परमेश्वर की वितरागता की अभिव्यक्ति ऐसी परिस्थिति में होती है। रूपावलोकन दृष्टि से स्थिरता प्राप्त थे, स्वरूप अवलोकन दृष्टि में भी सुगमता प्राप्त होती है। स्वरूप अवलोकन दृष्टि माने क्या, अपने को कल या परसों बात चली थी कि अपना अपनी जो आत्मा है ये बहुत सुंदर पदार्थ है, स्वरूप की सुंदरता का बात चल गई थी, बहुत रमणीय पदार्थ है। तो उसकी जो सुंदरता है, रमणीयता है, उसका दृष्टिकोण जिसको प्राप्त होता है उसको कहते हैं रूपावलोकन दृष्टि, रूप अवलोकन दृष्टि। मैंने आत्मा का जो रूप है उसको, रूप मैंने सुंदरता है, उसको देखने का जो दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण से स्थिरता प्राप्त होती है, मैंने उपयोग स्वरूप में स्थिर हो जाता है, परिणाम जम जाता है स्वरूप में। और स्वरूप अवलोकन दृष्टि में भी सुगमता प्राप्त होती है, और अपना आत्म स्वरूप का जो अनुभव है तो अनुभव दृष्टि में और सुगमता को प्राप्ति होती है। मैंने विशेष रूप से स्वरूपानुभव जो है वो सुगम होने लगता है। थोड़ा अध्यात्म का सूक्ष्म विषय है, फिर से कि जिसको आत्मस्वरूप की सुंदरता का दृष्टिकोण प्राप्त हुआ हो, सुंदरता क्या है, कोई भी संसारी जीव, कोई भी संसारी जीव संसार से छुटना चाहता है, तो आत्मा की सुंदरता यह है कि संसार से छुटने का मार्ग जो है उसको मिलना आसान हो जाता है। ये स्वरूप की सुंदरता है। ठीक है, किसी भी संसारी जीव को जब ऐसा एक भाव हो जाता है कि मेरे को ये संसार से छूट जाना है, क्यों कि अनेक प्रकार के दुखद प्रसंग का अनुभव करना पड़ता है बार बार, और त्रिविध ताप है, त्रिविध मैंने आदि व्याधि उपाधि कई प्रकार की होती ही रहती है, तो ऐसा नहीं हुए तो कब नहीं हुए कि संसार से परिमुक्त हो जाए, तब जब ये भावना और ये जिज्ञासा जिसको होती है उनको संसार से मुक्त होने का जो मार्ग है वो तो अंदर से इसकी सू जाती है, उसकी आत्मा ही उसमें मदद करते हैं। ये स्वरूप की सुंदरता है। और आत्मा में जो सुख शांति आनंद है तो उनको प्राप्त होती है और उसका दर्शन भी होता है। तो इस प्रकार की जो आत्मा की सुंदरता की का दृष्टिकोण जिसको साध्य हुआ उससे आत्मस्वरूप में स्थिरता बढ़ेगी। स्थिरता प्राप्त होने पर जो स्वरूप का अवलोकन माने स्वरूप का अनुभव है, तो अनुभव की जो दृष्टि है वो और सुगम हो जाती है। स्वरूप अनुभव की दृष्टि और सुगम हो जाती है, ये भी इसकी सुंदरता है। और ऐसा कब होता है कि दर्शन मोह का अनुभाग कम हो जाने से स्वरूप अवलोकन दृष्टि परिणमित होती है। स्वरूप अवलोकन दृष्टि कब परिणमित होती है कि दर्शन मोह का अनुभाग कम हो जाने से। और दर्शन मोह का अनुभाग कम कब होता है, जब संसार से मुक्त होने की सही जिज्ञासा सही भावना होती है तब। ऐसे भीतर में सब रिलेटेड है एक दूसरे से। तो दर्शन मोह के अनुभव कम होने के कारण कौन से हैं? अनेक विविध कारणों से दर्शन मोह का अनुभव कम होता है। दर्शन मोह माने मिथ्या भ्रांति, मिथ्यात्व मोह, उसको कहते हैं दर्शन मोह। अनुभव कम होना मैंने इसकी शक्ति कमजोर हो जानी है। बलवान अवरोधक भाव है आत्म कल्याण में, अवरोधक करने का सबसे बलवान कोई भाव है ये दर्शन मोह है। ये मोह को कमजोर करने से वो मरता है। बीमारी से भी कोई मरता है ऐसे उसकी बात है, कि वो तंदुरुस्त होने से उतना तगड़ा और ताकत वाला है तो जीव को बहुत परेशान करता है, लेकिन उसको कमजोर करने से बीमार होने से वो मरने के लायक हो जाता है। तो किस कारण से होता है कि महत्पुरुष का निरंतर यानी विशेष समागम, ज्ञानी का समागम करना बहुत यानी विशेष रूप से समागम करना यानी रस लेकर के समागम करना, रस आना उसमें, उससे दर्शन मोह कमजोर होगा। दूसरा वितराग श्रुत चिंतमना, घटता है तो समागम में वही बात हुई ना, चरण कमल की उपासना ही हुई इनके। हाँ, तो बलवान पड़े हो तो पुरुष की आज्ञा में दृढ़ता से चलता है, वही इसकी चरण कमल की उपासना है। चरण मैंने आज्ञा, चरण मैंने वचन, जैसे राके नाके रूप नियालता वो चरण है, चरण मैंने वचन है, ये पहला चरण ये दूसरा चरण। ऐसे जो वचन यानी कथन आचरण करने लायक होते हैं उसको चरण कहते हैं। आचरण करने लायक होते हैं उसको कहते हैं चरण। तो चरण को अमलीकरण में ले जाते हैं, कथन को बात को अमलीकरण में ले जाते हैं तो उसको कहते हैं कि आचरण, चरण का आचरण हुआ। ऐसा वीतराग श्रुत चिंतमना, जो हमारे आगम है परमागम है सत्शास्त्र है वो तो वितराग श्रुत है, क्योंकि वितराग वितरागों ने वो लिखा है कहा है और वितराग होने के लिए लिखा गया है। तो लिखने का जो मोटिव है उसमें वो स्पष्ट है, इसलिए इस श्रुत ज्ञान को वितराग श्रुत कहने में आता है। उसकी चिंतवना, उसकी चिंतवना मैंने गहराई से उसका अध्ययन अवगाहन, उसको कहते वितराग श्रुति चिंतवना। वो भी दर्शनों को कमजोर करने का एक साधन है। और गुण जिज्ञासा, गुण को प्रकट करने को, गुण को प्राप्त करने की भावना, आतुरता, मेरा अवगुण का अभाव हो और मेरी आत्मा में अनेक प्रकार के सद्गुण का प्रगटपना हो, प्राप्ति हो, इसकी जो आतुरता, उसको कहते हैं कि गुण जिज्ञासा। ऐसे परिणाम भी दर्शनों को कमजोर करता है।
ऐसी दोष प्रति खेद आ गई पर गुण की जिज्ञासा,
तो इसका पाठ है कि अपना जो दोष है उसका खेद वर्ते, वो भी गुण जिज्ञासा के कारण से होता है। ये दर्शनों का अनुभव कम होने का मुख्य हेतु, मुख्य कारण है। इससे स्वरूप दृष्टि सहज में परिणमित होती है, स्वरूप को अवलोकन करने की, अनुभव करने का जो दृष्टि है, दृष्टि मैंने सूझ है, अनुभव स्वरूप का कैसे करना अंतर्मुख होकर के, ये बहुत बड़ी समस्या रही, तो सहज में परिणमित हो जाती है। तो दर्शन का अनुभव कम होता है तो। तो इस पद का ये परमार्थ है। और दर्शन का अनुभव कम होने से आत्मस्वरूप जब भाषित होता है, भाष्यमान होता है ज्ञान में, तब आत्मा अनेक दिव्य गुणों से संपन्न है, भरा पड़ा है, तो ज्ञान में आता है। तो उसकी जो सर्वगुण संपन्नता है वो भी इसकी सुंदरता है। और सुख शांति और आनंद का स्वयं अनुभव हुए ऐसा इसका जो स्वभाव है वो भी इसकी सुंदरता है। कि ऐसे सुख शांति और आनंद का, आनंद में रहने के लिए हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़े, सहज स्वभाव से ये काम हमको, हमारा कार्य बन जाता है। तो सुख शांति और आनंद रूप परिणमत, परिणमन होना, उस रूप परिणमित होना, ये इसका सहज स्वभाव है, जिसमें किसी अन्य की मदद की जरूरत नहीं है। ये भी इसकी सुंदरता है। इस सब प्रकार से इसकी जो सुंदरता है वो भाषित होती है दर्शनों का अनुभाग कम होने से। इसलिए हमारी जो योजना है मुमुक्षु की भूमिका, उसमें सभी स्तर में, हर स्टेज में दर्शन मोह को मारने का, कम करने का, कमजोर करने का ही प्रयोग है। वो प्रयोग अच्छी तरह करने से आत्मा जो सर्वांग सुंदर है, कैसा है?
सर्वांग
सुंदर है, एक अंग भी इसका ऐ सुंदर नहीं है, सर्वांग सुंदर है तो नजर में आता है। और जब वो नजर में आता है तो चक्षु भी नासिकाग्र होती है। तो कुछ कवि ने बोल दिया कि नाके रूप निहारता, मैंने नजर आता है, नाक से रूप नजर आता है, तो नाक से तो रूप नजर आता ही है। वैसे ही जो चेहरा है उससे भी नाक से रूप नजर आता है। तो नाक ठीक नहीं होता तो कद्रूप रूप दिखता है। हमारे कहीं तीर्थंकर श्याम वर्ण वाले थे, जैसे भगवान नेमिनाथ थे, श्री कृष्ण भी श्याम थे, इनके ये कजिन थे वो भी श्याम थे। श्याम मैंने बहुत श्याम, घनश्याम बोले इसलिए, इसलिए उनको क्या बोले, श्यामता की घनिष्ठता। लेकिन स्वरूपवान बहुत थे, तो रूप का जो है कलर से मतलब उतना नहीं है जितना इसके जो आपको हिंदी में क्या बोलते हैं, गुजराती में तो नमना ही बोलते हैं, नमनास बोलते हैं, हम लोगों में क्या बोलते हैं मालूम नहीं। जैसे सब अंग घाटीले होते हैं, आंख भी बराबर हो, नाक भी बराबर हो, होंठ भी बराबर हो, कान भी बराबर हो, मैंने चेहरे का नक्शा ठीक हो, नाक नक्शा ठीक हो, हमारे गुजराती में उसका स्पेशल वर्ड है। सब बात नमनाई में सब बात आती है, नाजुकता, उसका जो मैंने नाप जो होता है अनुपात में सप्रमाण में, मोटा भी नहीं छोटा भी नहीं, ऐसे सब अंग जितने भी अंग हैं उस सब अंग अपने बिल्कुल नाप नाप में हो गए और घाट में हो गए, नाप में हो गए और उसका घाट भी बराबर हो गए। उसको एक शब्द में बोलते हैं नमनाइश, नमनाश, वे बहुत नमना है ऐसे। कोई को बात करता है तो उसका उसका सुंदरता दिखती है, हंसता है तो उसकी सुंदरता दिखती है, सब प्रकार का ऐसे। और क्या जरूरत है, आधा घंटा तो चल गया हो जाता है। इसलिए स्वरूप का भाव वासन वे स्वरूप अनुभव का या स्वरूप स्थिरता का कारण बोला गया है, उसको बीज ज्ञान भी कहने में आया है। स्वरूप निश्चय, बीज ज्ञान, भाव वासन सब एक ही बात है।
સમયસર પૂરું થઈ ગયું, 15 વીઘા પછી સવારે લઈને અત્યારે આ રીતે હતું એટલે એક ટાઈમ અમારા અમારા લોકોમાં
श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत पत्रांक 128 128 नंबर का पत्र है। खंभात के धर्म इच्छावान मुमुक्षुओं को लिखा गया है, संबोधन किया है धर्मेच्छुक भाइयों। ये पत्र के बाद ही उसी समय में सुभाग भाई का और कृपाल देव का मिलन हुआ था। प्रथम भादरवा शुद्ध छठ 128 नंबर का पत्र और 132 में है प्रथम भादरवा वध 132 में पहला पत्र से ये पत्र लिखो से मैं प्रथम भादरवा वधी 13 तो पत्र तो पाछल से लिखा है ना, ये पहला मैं आवे ने परिचय तो ये पहला थी हुई ने इतना आ अरसा में मिला से तुम कही सकते पहला भादरवा में 1946 ना पहला भादरवा में बे भादरवा से अधिक वहाँ पर पहला भादरवा तो भादवा में समस्या आती है सितंबर परिसर भादवा सुख पाचन ये सुछट का पता है। पत्र के प्रारंभ में संवत्सरिक क्षमा याचना, क्षमावणी बोलते हैं ना, क्षमावणी दिन बोलते हैं तो क्षमा याचना लिखी है सभी के प्रति। प्रथम संवत्सरी और इस दिन के पर्यंत संबंध में किसी भी प्रकार से आप लोगों का अभिनय साधना ऐ समाधि मेरे मन वचन और काया के किसी भी योग अधिष्ठान से नहीं हो, इसके लिए क्षमा की प्रार्थना करता हूं। प्रथम समस्त मैंने पूरा सम्मत मैंने पूरा वर्ष सम्मत माने वर्ष एक वर्ष पर्यंत हमारा आपका जो संबंध है उसमें किसी भी प्रकार से आपका अविनय हुआ हो मेरे से, क्योंकि वो तो 23 साल के उम्र के एक यंगस्टर थे और कहीं उम्र में बड़े लोग भी उनके समागम में आते थे, किसी को लगे कि देखो ये छोटा छोटा लड़का बड़े छोटे मुंह से बड़ी बात करता है, तो भी ऐसा भी लग जाए किसी को, पर अब ही नहीं लगे कि छोटा है बड़ों को उपदेश देता है। जबकि छोटापन और बड़ापन उम्र से संबंध नहीं रखता, बड़प्पन तो ज्ञान से है। पुरुषार्थ में युवान होना और ज्ञान में वृद्ध होना और सरलता में बालक होना है, अलग अलग गुण में ऐसे उपमा दी जाती है। तो पूरा वर्ष दरमियान किसी प्रकार से आपका अभिनय हुआ हो, असातना हुआ हो, असातना मैंने दोष हुआ हो, असमाधि हुई हो, असमाधि मैंने क्या उद्वेग का कोई कारण हुआ हो, असमाधान का कोई कारण हुआ हो, असुख का कोई कारण हुआ हो, दुख का कारण बना हो, किसे मन से वचन से और काया की किसी भी मन वचन काया का जो योग है उसके परिणाम कोई नहीं जाने। मैं तो मेरा दोष जो है उसको निकालना चाहता हूँ, क्षमा मांग करके भी मेरा दोष को मैं मिटाना चाहता हूँ। ये जो क्षमापना का पर्व है वो तो जैन संप्रदाय के अलावा ये व्यवहार कहीं भी नहीं है। जैनियों का व्यवहार भी दूसरे दूसरे संप्रदायों धर्मों के संप्रदायों के व्यवहार से इसका स्तर काफी ऊंचा दर्जे का है, तो कहने की आवश्यकता नहीं है कि इसका परमार्थ ऊंचा दर्जे का होता ही है, वो समझाने की जरूरत नहीं है। जिसका व्यवहार ऊंचा इसका परमार्थ भी ऊंचा, वो समझाने की कहने की जरूरत नहीं है। खान पीन में, रहन सहन में कई प्रकार की जो यत्ना होती है गृहस्थियों को, मुनियों को, ये जो यत्ना है, यत्ना मैंने दरकार के किसी भी दूसरे जीवों को दुख का या प्राण घात का हमारे मन वचन काया से कोई कारण नहीं बने, ऐसी जो दरकार उसको कहते हैं यत्ना। यत्न पूर्वक जो क्रियाएं हैं उसको कहते हैं यत्ना, यत्न मैंने दरकार। ये यत्ना का जो व्यवहार है, ऐसा व्यवहार गृहस्थी और साधुओं का कोई दूसरे संप्रदाय में देखा नहीं जाता। उसमें एक ही व्यवहार भी है क्षमापना का, वो कहीं नहीं है। हमको सबसे पहले ये अट्रैक्शन इस बात का हुआ था, मुंबई में हमारे जो कलीग्स थे काम साथ में करने वाले, वो एक सितंबर दिन था, तो संवत्सरी के दिन आए गद्दी पे और आते ही उसने हमारी क्षमा मांग ली, और वो सीनियर थे हमारे से उम्र में भी और काम में भी, दोनों में सीनियर था, पुराना आदमी था। हम तो हमारा तो स्टार्टिंग पीरियड था कमर्शियल लाइफ का, वो तो काफ़ी सीनियर था आदमी, उसने जो क्षमा की बात कही, तो मेरे से कुछ हुआ हो मन वचन का ऐसा मैं क्षमा मांग लेता हूँ। बोला कि बहुत बढ़िया है, साल में एक दिन अगर अंतर से हृदय से कोई क्षमा की याचना करता है तो हल्का सा हो जाता है, बिल्कुल हल्का हो जाता है। तो कभी मेरे मन में कुछ नहीं है, ये शल्य निकालने का बहुत अच्छा अवसर है। फिर अंतर से किया जाता है तो आदमी विदाउट प्रेजुडाइज फिर व्यवहार करेगा, मेरे मन में कुछ नहीं है, मैंने किया इसके लिए क्षमा है, इसका मतलब आइंदा मैं करना भी नहीं चाहता, ये बात भी साथ में आ जाती है, नहीं आती। बहुत बढ़िया व्यवहार है, बात तो इम्प्रेसिव लगी थोड़ी सी। परिणाम थोड़ा टॉन्टिंग भी करते थे इन दिनों में, कि आप जैन लोग हैं ना, तो छोटे छोटे जीव की तो बहुत दरकार करते हैं, लेकिन मनुष्यों के साथ तो आप लोगों का व्यवहार है तो अगले का खून पी जाते हैं। तो छोटे जीव तो पानी में होते हैं, तो पानी तो छान के पीना और खून अनछना पीना, ऐसा हम टॉन्टिंग में करते थे। दूसरे तो कोई बात मालूम नहीं थी, पानी और गण पीव नहीं गया। मजाक में बताओ, मजाक करता है तेरे बजे आवे तो मजाक ही। अब जो है पत्र का जो विषय है, तो परिभ्रमण को के संबंध में, परिभ्रमण की चिंता के कारण से चार गति में संसार के सभी जीव, हमारी आत्मा भी जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण करता ही रहता है, नहीं चाहते हुए भी अनिवार्य रूप से होता रहता है, और ये सबसे बड़ा दुखदायक प्रसंग है। जन्म होते वक्त भी बहुत दुख होता है, पीड़ा होती है, और मृत्यु के समय भी बहुत अकथ्य दुख होता है। तो इस दुख से छूटने का चिंता जिसको होती है कि कहाँ तक करते रहेंगे, उनको छूट जाना है, उस चिंता के कारण से जब चिंतित मन रहता है तो चिंतित मन कहीं लगता नहीं, निरस हो जाता है, सांसारिक प्रसंगों में उसकी निरसता आती है, उसको कहते हैं वैराग्य यानी उदासीनता। चिंतना के साथ उदासीनता संलग्न है, जुड़ी हुई है, उसी को सही चिंतना कहते हैं। देखो ये विषय चलता है परिभ्रमण की चिंतना का, तो बहुभाग हमारे मुमुक्ष जिसको ये कर्तव्य में होनी चाहिए, करने चाहिए, ये वेदना होनी चाहिए, उसको तकलीफ इस बात की है कि ये चिंता टिकती नहीं है, थोड़ी बहुत आती है, टिकती नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उदासीनता नहीं आई, कब टिकती है कब नहीं टिकती है, उसे रस लेते हैं और जगह तब, तो निरसता ही नहीं, उदासीनता माने निरसता ही नहीं, तो रस लेने लग जाता है, रस लेने लगता है तो वेदना सही रूप में नहीं आई, चिंता सही रूप में हुई नहीं, वरना सही चिंता से निरसता होना एकदम स्वाभाविक है। ये चिंतना का दूसरा पहलू है, एक सिक्का के दूसरी बाजू वो ही है, चिंतना के दूसरी बाजू निरसता है, उसके साथ बिल्कुल जुड़ी हुई है, अलग नहीं रहती। तो ये जो परिस्थिति है कि थोड़ी बहुत चिंतना वेदना होती है और फिर हम टिकती नहीं है, इसका मतलब क्या, और जगह रस लेते हैं, और जगह रस लेते मतलब क्या, और जगह जो निरस होना था वो नहीं हुए, तो उसको यथार्थ चिंतना या वेदना कहने में नहीं आती। तो तो उस चिंतना में कैसे ये जिसके साथ उदासीनता छा जाती है उसमें कैसे कैसे भाव होते हैं, किस किस प्रकार के भाव होते हैं, वो बात यहाँ पर लिखी गई है। शायद वो कृपालु देव का खुद का अनुभव ही समझो, अपने अनुभव से बहुत से बातें लिखते हैं ज्ञानी, साथ साथ वो नहीं लिखते हमारा ऐसा अनुभव है, लेकिन हमको समझ लेना चाहिए क्योंकि वो शास्त्र ज्ञान की पढ़ाई से नहीं लिखते हैं, वो कुछ लिखते हैं अपने अनुभव से लिखते हैं। तो उनको जब खुद को चिंतना होती है हुई तब कैसे भाव आए वो लिखते हैं कि अंतर्ज्ञान से स्मरण करने पर क्या हुआ, ज्ञान का अंतर से स्मरण आया, ऊपर ऊपर से विचार आया वो बात नहीं है। ऊपर से विचार आता है तो साथ में उदासीनता नहीं आती है, दूसरी जगह रस लेना हो ही जाता है। अंतर्ज्ञान से स्मरण होता है कि ऐसा कोई भी समय मालूम नहीं पड़ता या स्मरण में नहीं आता कि जिस काल में जिस समय में इस जीव ने परिभ्रमण नहीं किया हो, हमारे जीव ने हमेशा हमेशा जन्म मरण किया ही किया है, ऐसा कोई समय नहीं हुआ कि जन्म मरण से परिमुक्त हुआ हो, ऐसा कोई समय आया ही नहीं। जन्म हुआ है इसका मरण निश्चित है और जो मरता है वो दूसरी जगह निश्चित रूप से जन्म को पा लेता है। जीव जिस क्षेत्र में रहता है वो क्षेत्र उसको छोड़ना पसंद नहीं है, जीव जिस माहौल में रहता है वो माहौल छोड़ना पसंद नहीं करता है, जिस कुटुंबीजनों के मध्य में रहता है उनका संग छोड़ना नहीं चाहता। पर जब जन्म मरण होता है तो सबको द्रव्य क्षेत्र काल भाव सबको एक झटके से छोड़ना पड़ता है एक साथ, ये परिस्थिति नहीं चाहते हुए भी होती है, इसलिए बहुत दुखदायक होती है। मतलब कहने का ये है कि ये चिंतन ना ऊपर ऊपर की ऊपर छल्ली ऊपर ऊपर की विचारणा नहीं है, गहराई से आई नहीं है, ये इस बात की विशेषता है ना। ऊपर ऊपर से तो कईयों को आती है चली जाती है, आती है चली जाती है, इससे अपना कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, कोई फायदा नहीं इससे। आत्मकल्याण की दिशा में ये पहला कदम है, फर्स्ट स्टेप। तो पहले ही जन्म मरण की चिंता हो जाए, प्राय बुद्धिमान लोग भी संसार में ऐसा समझते हैं कि जन्म मरण का कोई उपाय नहीं, ये तो भगवान के हाथ की बात है, ऐसा भगवान चाहता है ऐसा जन्म दे देता है और जब चाहता है तब मार डालता है, गलत अभिप्राय है। भगवान को ऐसी फुर्सत है ही नहीं, और संसार में तो जन्म का कार्य को अच्छा माना गया है और मरण का कार्य को बुरा माना गया है, क्योंकि घर में कोई भी नया मेंबर आता है तो खुशी लगाती है, चलो हमारा परिवार वृद्धि हुई। मरता है तो अच्छा, नहीं एक भी मरता है तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ऐसा मान लिया जाता है कि भगवान के हाथ की बात है, तो एक भी मरण से कईयों को दुख होता है, तो संसार में हर क्षण में बहुत मनुष्यों का जो मरण होता है उसमें बहुतों को दुख होता है, तो करुणा सागर को कोई करुणा नहीं आती है इसकी क्या? भगवान तो करुणा सागर माना गया, करुणावान नहीं, करुणा का सागर माना गया है। एक भी मनुष्य रुदन करता है, रोता है मृत्यु के कारण से, स्वजन के मृत्यु के कारण से, उसकी दया सामान्य मनुष्य को आती है कि ऐसा दुख तो हमारे दुश्मन को भी नहीं होना है, पर करुणा सागर को तो उसकी करुणा नहीं आए ऐसा कैसा बन सकता है। तो भगवान किसी को मारता है ये बात आउट ऑफ कॉमन सेंस है, सामान्य बुद्धि से भी उसका स्वीकार नहीं होता। अपने कर्मों के कारण से जन्म होता है, अपने कर्मों के कारण से ही मृत्यु होता है, यानी देह का संयोग और देह का, तो आत्मा का कोई जन्म मरण है ही नहीं। देह के संयोग को जन्म कहते हैं, देह के वियोग को मृत्यु कहते हैं, इतनी सी बात है। तो ऐसा इस जीव ने बहुत किया है, सभी काल में वही हुआ है, और इसका कारण संकल्प विकल्प है। कई प्रकार के जो संकल्प विकल्प है इससे नया आयु बनता है, पर किसी भी काल में वो समाधि को नहीं भूला हो, मैंने आत्म शांति मिली नहीं हो, मिली हो ऐसा कोई काल ही नहीं है, अशांत 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 मन से ही वो जीता है, जीवन गुजारता है, ये निरंतर स्मरण रहा करता है। देखो स्मरण छूट जाता है, चिंतना छूट जाती है, ऐसा नहीं चले, निरंतर स्मरण रहता है। घर में स्वजन की मृत्यु होती है तो भूल जाता है क्या? फिर मैं खाने लगा ना तो भूल गया, खाने मेरे सारे ही नहीं, सुबह मर गया है दोपहर को खाना कैसे भाएगा? मैं ऐसा नहीं लेता है कभी खाने में, और बाद में के दिन लड्डू खाया या मिठाई खाई इसलिए हम भूल गए, तो सुहाता ही नहीं है, बारवा की मिठाई स्वाती नहीं। जब दूसरे के मरण में वो हालत है तो ये तो स्वयं के मरण की बात है, उसकी चोट तो अधिक लगनी चाहिए ना। हाँ, इसलिए वो भूला नहीं जाता। इस प्रकार से जो स्मरण आता है उसको कहते हैं अंतर ज्ञान से स्मरण होना, अंतर से आता है तो ऐसा होता है। देखो जब किसी की मृत्यु होती है तो कुटुंब वाले भी रोने को लगते हैं, सगे संबंधी आने आते हैं वो भी रोते हैं, और अगल बगल में से पड़ोसी लोग आते हैं वो भी रोते हैं, जो भी बाहर से आए हैं वो भूल जाएंगे, व्यवहारिक तौर से आ जाते हैं साथ में रो भी लेते हैं, लेकिन फिर अपने घर जाके सब अपने अपने काम में लग जाते हैं और भूल जाते हैं कि वो मर गया। लेकिन जिस कुटुंब में मृत्यु हुआ है, जिस घर में मृत्यु हुआ है, वो घर वाले भूलते नहीं है, कैसे भूलेंगे? नींद आ गई तो भूल गया, कि नींद आती नहीं है, नींद उड़ जाती है, ऐसा होता है कि नहीं होता? क्यों? चोट लगी है भीतर में, इतनी गहराई से असर होती है तो छूटती नहीं, पर ऊपर ऊपर से जो असर होती है तो दो आंसू बहा लेते हैं, बात खत्म। उसको परिभ्रमण की चिंता नहीं है, जन्म मरण की चिंता उसको है ही नहीं। ये तो निरंतर स्मरण रहा करता है और यह महावैराग्य को बहुत उदासीनता को देता है। उदासीनता नहीं शब्द लिया है, महाउदासीनता, बड़ी उदासीनता महावैराग्य को वो देता है। उसी को परिभ्रमण की चिंता बोलने में आई है। आगे इसमें भी परिभ्रमण का कारण दिया है और आगे भी परिभ्रमण के कारण ही दिए हैं कि किस किस कारण से हमारा परिभ्रमण हुआ। चिंतना परिभ्रमण की कैसी होती है और इसके फल स्वरूप उदासीनता कैसी होती है, ये बात अगर सही रूप में समझ में आ जाए तो ये चिंतना लानी नहीं पड़ेगी और उदासीनता भी लानी नहीं पड़ेगी, पर उस विषय में असमाधान भी नहीं रहेगा, प्रश्न भी खड़ा नहीं होगा। वरना ये चिंतना कैसे, वेदना कैसे और ये थोड़ा होता है थोड़ा खेद होता है निकल जाता है, वो बात सब रहती है, वो तो सही रूप में उसकी क्लैरिटी लाई नहीं है। परिभ्रमण के दुखों का, जन्म मरण के दुखों का भाव भाषण होना चाहिए, ये स्टेज का खास विषय है। जहां तक उसका भाव भाषण नहीं होता है वहां तक उसकी गंभीरता लगती नहीं है, फील होती नहीं है और वहां तक सही रूप में ये परिणमन आता नहीं। हर स्टेज में इसका भावभाषण लिया गया है, जो भी आगे आगे का स्टेज है उसमें इसका भावभाषण होना, तो भावभाषण वाली समझ है वही सही समझ है, क्योंकि इसमें स्वयं का इन्वॉल्वमेंट है, वरना परिभ्रमण दूसरे का होता है वही चलता है, बातों में अपने को उसका असर नहीं आता है। जैसे दूसरे का परिभ्रमण की चर्चा चल रही हो, हमारी बात नहीं हो, तो बिना भाव वसन ऐसी समझ होती है। और बिना भाव भाषण ये काम होने वाला नहीं है। भाव भाषण में इस विषय का मूल्यांकन गर्भित है, एक दृष्टांत ले लो कि हमारे स्टाफ में दो स्तर के नौकर लोग होते हैं, एक बुद्धि चलाने वाले एक बुद्धि नहीं चलाने वाले। इसको काम सौंपा तो बुद्धि नहीं चलाएगा और दूसरे को काम सौंपा तो करेगा और नहीं करेगा, दोनों में बुद्धि चलाएगा। एक दृष्टांत ले लेना कि जो बुद्धि नहीं चलाता है उनको एक काम सौंपा, देखो भाई ये चिट्ठी जरूरी है, आप फलाने फलाने आदमी को दे के आओ, ये इसका एड्रेस है, मैं तुमको दे के आना है, बहुत जरूरी है और पहुंचाना ही है और इस टाइम की लिमिट में पहुंचाना है, इसलिए तुम जल्दी से चले जाओ और इतना बजे के पहले पहले उसको पहुंचा दो, थोड़ा मार्जिन भी है टाइम का, इसलिए तुम अभी निकल जाओ। अब वो आदमी वहां गया तो वहां वो जिसको चिट्ठी देने की थी वो वहां था नहीं, उसने बोला कि हाथों हाथ देना है, दूसरे को नहीं देना है, ये चिट्ठी दूसरे के हाथ में नहीं जानी चाहिए, वो उसके सूचना थी। वो आदमी नहीं मिला तो उसको किसी को दिया, किसी को दिया नहीं, वापिस चलाया तो उसने बुद्धि नहीं चलाई कि चिट्ठी पहुंचाने का इम्पोर्टेंस क्या है, और इस काम का इम्पोर्टेंस जिसको भाषित हुआ ऐसे आदमी को, वो भी नौकर है या खुद धनी है, वो जाएगा इधर तो क्या करेगा, ये फलाना फलाना है या नहीं है, कहीं नहीं है तो कहाँ गया है, तो बोले तो मालूम नहीं है। ठीक है, अभी आपको मालूम नहीं है लेकिन वो कहाँ कहाँ जाते हैं बताइए, उसका किस वक्त में कहाँ कहाँ आना जाना होता है, हम वहां पहुंचेंगे, हमारे पास समय का मार्जिन है, मैंने जैसे कैसे भी पता लगाएगा। और जो बुद्धि नहीं चलाएगा तो हीरो हीरो घोगे जी है, मैंने डे ले आज गुजराती में कहा बात है, तुम तो मां गया था, वो नहीं मिला, हम क्या करें, इनकम बिगड़ गया, इसका क्या। तो जिसको काम का मूल्यांकन है उसको कहते हैं भाव भाषण, वो भाव, जिसको भाव भाषण है वो काम करके ही आएगा, जिसको भाव भाषण नहीं है हम क्या करें, तो नहीं थे हम तो जाके आए, ऐसा नहीं चलता। ये काम किस ढंग से करना है वो समझता नहीं है, ऐसे यहां भी जन्म दुखों का जिसको भाव भाषण है तो उसको वेदना में आए बिना रहेगा नहीं, उसको उदासीनता आए बिना रहेगी नहीं, और ये परिभ्रमण से छूटने का निर्धार जो निश्चित से लिया है पांचवा पैराग्राफ, वो भी किए बिना रहेगा नहीं, और निर्धार होगा तो उसी कार्य क्षेत्र में उसकी प्रवृत्ति का फोर्स से प्रवृत्ति होने हुए बिना रहेगी, अमलीकरण के स्टेज में आ जाएगा। तो पहला स्टेज चालू होते ही तीसरे चौथे स्टेज में प्रवेश हो जाता है शीघ्र, अपने योजना में 14 स्टेज लिया है करें, इसमें शुरू होते ही 3-4 स्टेज में आ जाता है। सही रूप में आता है, योग्यता की विचित्रता यह है, पहली सीढ़ी पे भी कदम रखा नहीं जाना। और जो लोग पहली सीढ़ी पे कदम नहीं रखते हैं, ये दूसरों को और ज्ञानियों का जजमेंट लिखते हैं, कितना नुकसान का बात हो जाता है, तो फलाना तो ऐसा है, फलाना तो ऐसा है, फलाना तो ऐसा है, इसका कोई ठिकाना ही नहीं है अपने का, तो पहले कदम रखने का ही ठिकाना नहीं होता है। जानकारी करने से कोई योग्यता आ जाती है ऐसी बात तो नहीं है, जो ज्ञानी के मार्ग पर चलते हैं वही अंत में सिद्धि को प्राप्त करते हैं, बाकी तो परिभ्रमण अनंत काल से हो रहा है और होता रहेगा। जिसको अपने आत्मा को बहुत दुख हुआ है उस दुख से मुक्त करने की करुणा दया अपनी आत्मा की दया जिसको आई वही मुक्त होने का अधिकारी है। जिसको खुद की दया नहीं है वो तो दुख से मुक्त होने का अधिकारी मैंने पात्रता वाला ही, वो तो 40 नंबर के पत्र में लिखा है। 40 नंबर के पत्र में या 100 उसमें ही है। अनंत जन्म मरण करी चुकेला आ आत्मा ने करुणा तेवा अधिकारी ने उत्पन्न थाय छे अने तेज कर्म मुक्त थवानो जिज्ञासु कही शकाय छे। तेज पुरुष मने वही आत्मा यथार्थ पदार्थ को यथार्थ स्वरूप में